This is the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, International General Certificate of Secondary Education, June 2009 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सकें संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
जरा सुनिए भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म से रवाना होगी?
जी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से. लेकिन आप तो गलत दिशा से आ रही हैं. आपको पहाड़गंज की तरफ से आना चाहिए था. आपका प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल दूसरे छोर पर है.
क्या बताऊं भाई साहब, पहाड़गंज की तरफ ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इसलिए ऑटो रिक्शा वाला इधर छोड़ गया. क्या आप मुझे गाड़ी में बैठा सकते हैं?
जरूर बैठा देंगे बहन जी, लेकिन 100 रुपए लगेंगे.
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है. सूचना विभाग के सभी कर्मचारी इस समय पर्यटकों को जानकारी देने में व्यस्त हैं. यदि आप होटल या यात्रा बुक करना चाहते हैं तो अपने टेलीफोन पर 1 डायल करें. यदि बुकिंग में परिवर्तन करवाना या उसे रद्द करवाना चाहते हैं तो 2 डायल करें. और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया प्रतीक्षा करें, हम यथाशीघ्र आपसे बात करेंगे. धन्यवाद.
कॉलेज जा रही हो क्या रूपा?
बताया तो था, आज मेरी छुट्टी है. मैं तो रिहर्सल पर जा रही हूँ. क्यों, कोई काम था क्या?
कुछ खास तो नहीं, बस लाइब्रेरी की एक पुस्तक वापस करनी थी, वरना उस पर जुर्माना लग जाएगा.
वैसे मैं लौटते वक्त कॉलेज से होकर आ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर.
मुझे मालूम है, मैं तुम्हारी सिनेमा की टिकट मंगवा कर रखूंगा.
अरे अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है. वो देखिए, बोर्ड भी लगा हुआ है.
माफ कीजिए बहन जी, मेरी माँ को सामने की डिस्पेंसरी से लाना है. बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, प्लीज.
लेकिन भाई साहब, आप तो सबका रास्ता रोक रहे हैं, ये नहीं हो सकता.
ठीक है बहन जी, लीजिए, अभी हटा लेता हूँ. और अब पेश है मौसम का हाल. अगले 24 घंटों में तमिलनाडु के तटवर्ती शहरों में मौसम खराब रहेगा. बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के कारण चेन्नई और पांडिचेरी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. मछुआरों को सलाह दी जा रही है कि वे मछली पकड़ने न निकलें.
भाई साहब, ये आम क्या भाव दे रहे हैं?
आपको कितने लेने हैं बहन जी? बहुत बढ़िया आम है, दशहरी. एक एक आम मीठा होगा.
वो सब तो ठीक है भैया, मगर भाव तो बताओ.
अजी भाव क्या है, आपके लिए 80 रुपए किलो लगा देंगे। बोलिए कितने तोल दूं, 1 किलो या 2 किलो?
नहीं भैया, बड़े महंगे दे रहे हो, इस भाव पर तो केसर आम मिल जाएंगे। जरा सुनिए भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म से रवाना होगी?
जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। लेकिन आप तो गलत दिशा से आ रही हैं, आपको पहाड़गंज की तरफ से आना चाहिए था, आपका प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल दूसरे छोर पर है।
क्या बताऊं भाई साहब, पहाड़गंज की तरफ ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इसलिए ऑटो रिक्शा वाला इधर छोड़ गया। क्या आप मुझे गाड़ी में बैठा सकते हैं?
जरूर बैठा देंगे बहन जी, लेकिन 100 रुपए लगेंगे।
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है। सूचना विभाग के सभी कर्मचारी इस समय पर्यटकों को जानकारी देने में व्यस्त हैं। यदि आप होटल या यात्रा बुक करना चाहते हैं तो अपने टेलीफोन पर 1 डायल करें। यदि बुकिंग में परिवर्तन करवाना या उसे रद्द करवाना चाहते हैं तो 2 डायल करें। और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया प्रतीक्षा करें, हम यथाशीघ्र आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।
कॉलेज जा रही हो क्या रूपा?
बताया तो था, आज मेरी छुट्टी है, मैं तो रिहर्सल पर जा रही हूँ। क्यों, कोई काम था क्या?
कुछ खास तो नहीं, बस लाइब्रेरी की एक पुस्तक वापस करनी थी, वरना उस पर जुर्माना लग जाएगा।
वैसे मैं लौटते वक्त कॉलेज से होकर आ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर।
मुझे मालूम है, मैं तुम्हारी सिनेमा की टिकट मंगवा कर रखूंगा।
अरे अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मना है, वो देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है।
माफ कीजिए बहन जी, मेरी माँ को सामने की डिस्पेंसरी से लाना है, बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, प्लीज।
लेकिन भाई साहब, आप तो सबका रास्ता रोक रहे हैं, ये नहीं हो सकता।
ठीक है बहन जी, लीजिए अभी हटा लेता हूँ। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों में तमिलनाडु के तटवर्ती शहरों में मौसम खराब रहेगा। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के कारण चेन्नई और पांडिचेरी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जा रही है कि वे मछली पकड़ने न निकलें।
भाई साहब, ये आम क्या भाव दे रहे हैं?
आपको कितने लेने हैं बहन जी? बहुत बढ़िया आम है, दशहरी, एक एक आम मीठा होगा।
वो सब तो ठीक है भैया, मगर भाव तो बताओ।
अजी भाव क्या है, आपके लिए 80 रुपए किलो लगा देंगे। बोलिए कितने तोल दूं, 1 किलो या 2 किलो?
नहीं भैया, बड़े महंगे दे रहे हो, इस भाव पर तो केसर आम मिल जाएंगे। अभ्यास दो प्रश्न सात। क्रिकेट में जो स्थान डॉन ब्रैडमैन और फुटबॉल में पेले का है, हॉकी में वही स्थान ध्यानचंद का है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। रेडियो सरगम की संवाददाता स्नेहा भटनागर ने उनके बेटे अशोक कुमार से ध्यानचंद और हॉकी के बारे में एक बातचीत की। इसे ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा भटनागर और खेल जगत कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं भारत की हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और स्वर्गीय ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, रेडियो सरगम के सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत है।
जी स्नेहा जी, कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अशोक जी, सबसे पहले शायद हमारे सुनने वाले यही जानना चाहेंगे कि आपके पिता ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था?
शायद उनकी तेजी और फुर्ती की वजह से। वे दुनिया के सबसे तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड थे।
सुनते हैं उनकी हॉकी की जांच पड़ताल भी कराई गई थी, क्या यह सच है?
जी हाँ, जिस खूबसूरती से गेंद उनकी हॉकी के इशारों पर नाचती थी, उससे हॉलैंड को शक हो गया था कि कहीं उनकी हॉकी में चुंबक तो नहीं छुपा है, इसलिए उसे तोड़कर उसकी जांच कराई गई। इसी तरह जापान को संदेह था कि शायद उनकी हॉकी पर गोंद लगा है, इसलिए वहां भी उसकी रासायनिक जांच कराई गई।
सुना है हिटलर भी ध्यानचंद के प्रशंसक बन गए थे, ये कैसे हुआ?
ये 1936 के ओलंपिक खेलों की बात है। भारत ने उन खेलों में जर्मनी को 8-1 से हराया था। उस हार के बाद हिटलर ने स्वयं मेरे पिताजी से संपर्क किया और कहा कि अगर वे जर्मनी में आ जाएं तो उन्हें जर्मन सेना में एक ऊंचे पद पर रख लिया जाएगा, लेकिन पिताजी ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि वे भारत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते।
तो क्या ध्यानचंद जी सेना में काम करते थे?
जी हाँ, हमारा तो पूरा परिवार ही सैनिक परिवार था। मेरे दादाजी ब्रिटिश भारतीय सेना में हवलदार थे और पिताजी भी 16 साल की उम्र से ही सेना में भर्ती हो गए थे।
अरे वाह, तो फिर उन्होंने हॉकी खेलना कब और कैसे शुरू किया?
पिताजी की रेजिमेंट में हॉकी टीम के कोच थे बल्ले तिवारी। पता नहीं कैसे उन्होंने पिताजी में छुपी हॉकी की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और भारत की ओलंपिक टीम में उन्हें कब चुना गया?
भारत ने पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपनी हॉकी टीम भेजी थी और पिताजी को उस टीम में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ था। उन खेलों में भारत की टीम ने अपने 4 मैचों में कुल 23 गोल किए।
इतने सारे गोल! तब तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बन गया होगा।
नहीं, रिकॉर्ड के लिए भारत को 4 साल और प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में अमरीका को 24-1 से हराकर भारत ने गोलों का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें पिताजी के भी 8 गोल शामिल थे।
ध्यानचंद जी के खेल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्या वे गोल करने के लिए मशहूर थे?
गोल करने के लिए तो मशहूर थे ही, लेकिन उनके खेल की सबसे बड़ी विशेषता शायद ये थी कि वे गेंद को अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रखते थे। उनके पास बड़े ही नपेतुले होते थे और वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे।
आपके पिताजी ने हॉकी के जिस युग की शुरुआत की, उसके चलते अगले 2-3 दशकों तक दुनिया में भारतीय हॉकी की धाक बनी रही, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से भारतीय हॉकी की जो दशा हुई है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
जी, मेरे विचार में इसके लिए मुख्य रूप से 3 चीजें जिम्मेदार हैं। टीमों में बिना वजह किए जाने वाले फेरबदल, होनहार खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीति का हस्तक्षेप।
तो फिर यह बताइए कि ऐसे में हॉकी की दिशा को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है?
स्कूलों और कॉलेजों में होनहार खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं बनानी होंगी। हॉकी को लोकप्रिय बनाना होगा और उसमें पैसा लगाना होगा। आप स्वयं देख लीजिए कि क्रिकेट में जीत हासिल होने पर देश में कैसी दीवानगी छा जाती है। भारत की टीम ने हॉकी का एशिया कप जीता, कहीं कोई खुशी मनाई गई?
अशोक कुमार जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं स्नेहा भटनागर और खेल जगत कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं भारत की हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और स्वर्गीय ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, रेडियो सरगम के सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत है।
जी स्नेहा जी, कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अशोक जी, सबसे पहले शायद हमारे सुनने वाले यही जानना चाहेंगे कि आपके पिता ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था?
शायद उनकी तेजी और फुर्ती की वजह से। वे दुनिया के सबसे तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड थे।
सुनते हैं उनकी हॉकी की जांच पड़ताल भी कराई गई थी, क्या यह सच है?
जी हाँ, जिस खूबसूरती से गेंद उनकी हॉकी के इशारों पर नाचती थी, उससे हॉलैंड को शक हो गया था कि कहीं उनकी हॉकी में चुंबक तो नहीं छुपा है, इसलिए उसे तोड़कर उसकी जांच कराई गई। इसी तरह जापान को संदेह था कि शायद उनकी हॉकी पर गोंद लगा है, इसलिए वहां भी उसकी रासायनिक जांच कराई गई।
सुना है हिटलर भी ध्यानचंद के प्रशंसक बन गए थे, ये कैसे हुआ?
ये 1936 के ओलंपिक खेलों की बात है। भारत ने उन खेलों में जर्मनी को 8-1 से हराया था। उस हार के बाद हिटलर ने स्वयं मेरे पिताजी से संपर्क किया और कहा कि अगर वे जर्मनी में आ जाएं तो उन्हें जर्मन सेना में एक ऊंचे पद पर रख लिया जाएगा, लेकिन पिताजी ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि वे भारत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते।
तो क्या ध्यानचंद जी सेना में काम करते थे?
जी हाँ, हमारा तो पूरा परिवार ही सैनिक परिवार था। मेरे दादाजी ब्रिटिश भारतीय सेना में हवलदार थे और पिताजी भी 16 साल की उम्र से ही सेना में भर्ती हो गए थे।
अरे वाह, तो फिर उन्होंने हॉकी खेलना कब और कैसे शुरू किया?
पिताजी की रेजिमेंट में हॉकी टीम के कोच थे, बल्ले तिवारी। पता नहीं कैसे उन्होंने पिताजी में छुपी हॉकी की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और भारत की ओलंपिक टीम में उन्हें कब चुना गया?
भारत ने पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपनी हॉकी टीम भेजी थी और पिताजी को उस टीम में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ था। उन खेलों में भारत की टीम ने अपने 4 मैचों में कुल 23 गोल किए।
इतने सारे गोल! तब तो कोई ना कोई रिकॉर्ड बन गया होगा।
नहीं, रिकॉर्ड के लिए भारत को 4 साल और प्रतीक्षा करनी पड़ी और 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में अमरीका को 24-1 से हराकर भारत ने गोलों का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें पिताजी के भी 8 गोल शामिल थे।
ध्यानचंद जी के खेल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्या वे गोल करने के लिए मशहूर थे?
गोल करने के लिए तो मशहूर थे ही, लेकिन उनके खेल की सबसे बड़ी विशेषता शायद ये थी कि वे गेंद को अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रखते थे। उनके पास बड़े ही नपेतुले होते थे और वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे।
आपके पिताजी ने हॉकी के जिस युग की शुरुआत की, उसके चलते अगले 2-3 दशकों तक दुनिया में भारतीय हॉकी की धाक बनी रही, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से भारतीय हॉकी की जो दशा हुई है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
जी, मेरे विचार में इसके लिए मुख्य रूप से 3 चीजें जिम्मेदार हैं। टीमों में बिना वजह किए जाने वाले फेरबदल, होनहार खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीति का हस्तक्षेप।
तो फिर यह बताइए कि ऐसे में हॉकी की दिशा को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है?
स्कूलों और कॉलेजों में होनहार खिलाड़ियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं बनानी होंगी, हॉकी को लोकप्रिय बनाना होगा और उसमें पैसा लगाना होगा। आप स्वयं देख लीजिए कि क्रिकेट में जीत हासिल होने पर देश में कैसी दीवानगी छा जाती है। भारत की टीम ने हॉकी का एशिया कप जीता, कहीं कोई खुशी मनाई गई?
अशोक कुमार जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास 3, प्रश्न 8 से 13। भारतीय टेलीकॉम के मालिक सुनील भारती मित्तल एक ऐसे उद्योगपति हैं जो मात्र 3 दशकों के भीतर रंग से राजा बन गए हैं। उद्योग जगत की संवाददाता रश्मि पुगलिया ने उनसे उनकी सफलता के रहस्य पर बातचीत की। इसे ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी। मित्तल साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप धीरू भाई अंबानी की तरह जीरो से हीरो बने हैं, क्या यह सच है?
जीरो कहना तो थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, इतना जरूर मानता हूँ कि मैं एक साधारण स्तर से ऊपर उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ।
क्या आपने बचपन से ही तय कर लिया था कि आप कारोबार करेंगे?
आप कह सकती हैं, क्योंकि पढ़ाई में तो मेरा मन लगता नहीं था और खेल कूद में मैं बहुत अच्छा नहीं था। मेरे शहर लुधियाना में बिजनेस का माहौल भी था, इसलिए 1976 में कॉलेज छोड़ते ही मैंने एक छोटा सा धंधा कर लिया।
क्या पूछ सकती हूँ वह क्या धंधा था और कितने पैसे से शुरू किया था?
हीरो साइकिल कंपनी के लिए पुर्जे बनाने का धंधा था, जो कुल 20,000 रुपये की पूंजी से एक छोटे से शेड में शुरू किया था। वह पूंजी भी पिताजी ने बड़ी मुश्किल से जुटा कर दी थी। छोटा सा काम था, स्टील की छड़ों को गर्म करके साइकिल के पुर्जे बनाया करते थे।
यह साइकिलों से शुरू हुआ सफर मोबाइलों तक कैसे पहुंचा?
ये संयोग और संघर्ष की एक लंबी कहानी है। साइकिलों के कारोबार से ऊब कर मैं मुंबई गया और वहां जाकर जापान से जनरेटर आयात करने का काम शुरू किया। लेकिन कारोबार जमते ही सरकार ने जनरेटरों के आयात पर रोक लगा दी। हारकर मुझे 1986 में भारतीय टेलीकॉम कंपनी खोलनी पड़ी।
और आज आपकी कंपनी की गिनती भारत की 10 बड़ी कंपनियों में होती है। आपको उद्योग जगत के अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं और आप अरबों के मालिक बन चुके हैं। आपकी दृष्टि में सफलता की परिभाषा क्या है?
सफलता की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। आज जो सफलता है वह कल आपके लिए एक साधारण घटना होती है। मैंने कुल 20,000 रुपये से कारोबार शुरू किया था। आज मैं 20 अरब का कारोबार करता हूँ। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है कि सफलता वो है जब आप शाम को अपना काम पूरा कर लें तो आपको लगे कि हाँ, कुछ किया।
लेकिन बदलती परिभाषाओं के पैमाने पर भी आप सफल ही कहे जाएंगे, इस सफलता का राज क्या है?
मेरा एक मूल मंत्र है सफलता के लिए, जो मैं स्कूल कॉलेज के युवाओं को बताता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मौका मिले तो आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं वही कीजिए। इसके बिना कोई औसत जिंदगी तो जी सकता है, लेकिन बड़ी सफलता नहीं पा सकता। उस धंधे में बिल्कुल मत रहिए जिसमें आपका मन नहीं लग रहा। सफलता वहीं मिली है जहां लोगों ने अपनी पसंद का काम करने का संकल्प लिया और उसमें अपनी जान लगा दी।
क्या भारत के विकास के लिए भी कोई मूल मंत्र है आपके पास? भारत में आप जैसे अरबपतियों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गरीबों की संख्या नहीं घट रही। क्या इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है?
गरीबी को दूर करते हुए भारत का विकास करने के लिए एक नहीं बल्कि कई समाधानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरी समझ में सबसे पहले हमें देश में वोकेशनल या कारीगरी की शिक्षा को सुलभ और लोकप्रिय बनाना होगा और इन धंधों में लगे लोगों का सामाजिक सम्मान बढ़ाना होगा। आने वाले समय में दुनिया के संपन्न देशों में कारीगर, मिस्त्री, नर्स और बावर्ची जैसे धंधों में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी होने वाली है। भारत में 20-25 करोड़ युवक ऐसे हैं जो ऐसे धंधों की शिक्षा पाकर विदेशों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इससे बेरोजगारी घटेगी, गरीबी दूर हो सकेगी और देश का विकास भी होगा।
मित्तल साहब, समय निकालकर बातचीत करने के लिए उद्योग जगत कार्यक्रम के श्रोताओं की ओर से आपका बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
मित्तल साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप धीरो भाई अंबानी की तरह जीरो से हीरो बने हैं, क्या यह सच है?
जीरो कहना तो थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, इतना जरूर मानता हूँ कि मैं एक साधारण स्तर से ऊपर उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ।
क्या आपने बचपन से ही तय कर लिया था कि आप कारोबार करेंगे?
आप कह सकती हैं, क्योंकि पढ़ाई में तो मेरा मन लगता नहीं था और खेल कूद में मैं बहुत अच्छा नहीं था। मेरे शहर लुधियाना में बिजनेस का माहौल भी था, इसलिए 1976 में कॉलेज छोड़ते ही मैंने एक छोटा सा धंधा कर लिया।
क्या पूछ सकती हूँ वह क्या धंधा था और कितने पैसे से शुरू किया था?
हीरो साइकिल कंपनी के लिए पुर्जे बनाने का धंधा था, जो कुल 20,000 रुपये की पूंजी से एक छोटे से शेड में शुरू किया था। वह पूंजी भी पिताजी ने बड़ी मुश्किल से जुटा कर दी थी। छोटा सा काम था, स्टील की छड़ों को गर्म करके साइकिल के पुर्जे बनाया करते थे।
यह साइकिलों से शुरू हुआ सफर मोबाइलों तक कैसे पहुंचा?
ये संयोग और संघर्ष की एक लंबी कहानी है। साइकिलों के कारोबार से ऊब कर मैं मुंबई गया और वहां जाकर जापान से जनरेटर आयात करने का काम शुरू किया। लेकिन कारोबार जमते ही सरकार ने जनरेटरों के आयात पर रोक लगा दी। हारकर मुझे 1986 में भारतीय टेलीकॉम कंपनी खोलनी पड़ी।
और आज आपकी कंपनी की गिनती भारत की 10 बड़ी कंपनियों में होती है। आपको उद्योग जगत के अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं और आप अरबों के मालिक बन चुके हैं। आपकी दृष्टि में सफलता की परिभाषा क्या है?
सफलता की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। आज जो सफलता है वह कल आपके लिए एक साधारण घटना होती है। मैंने कुल 20,000 रुपये से कारोबार शुरू किया था। आज मैं 20 अरब का कारोबार करता हूँ। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है कि सफलता वो है जब आप शाम को अपना काम पूरा कर लें तो आपको लगे कि हाँ, कुछ किया।
लेकिन बदलती परिभाषाओं के पैमाने पर भी आप सफल ही कहे जाएंगे, इस सफलता का राज क्या है?
मेरा एक मूल मंत्र है सफलता के लिए, जो मैं स्कूल कॉलेज के युवाओं को बताता हूँ। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मौका मिले तो आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं वही कीजिए। इसके बिना कोई औसत जिंदगी तो जी सकता है, लेकिन बड़ी सफलता नहीं पा सकता। उस धंधे में बिल्कुल मत रहिए जिसमें आपका मन नहीं लग रहा। सफलता वही मिली है जहां लोगों ने अपनी पसंद का काम करने का संकल्प लिया और उसमें अपनी जान लगा दी।
क्या भारत के विकास के लिए भी कोई मूल मंत्र है आपके पास? भारत में आप जैसे अरबपतियों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गरीबों की संख्या नहीं घट रही। क्या इसका कोई समाधान निकाला जा सकता है?
गरीबी को दूर करते हुए भारत का विकास करने के लिए एक नहीं बल्कि कई समाधानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरी समझ में सबसे पहले हमें देश में वोकेशनल या कारीगरी की शिक्षा को सुलभ और लोकप्रिय बनाना होगा और इन धंधों में लगे लोगों का सामाजिक सम्मान बढ़ाना होगा। आने वाले समय में दुनिया के संपन्न देशों में कारीगर, मिस्त्री, नर्स और बावर्ची जैसे धंधों में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी होने वाली है। भारत में 20-25 करोड़ युवक ऐसे हैं जो ऐसे धंधों की शिक्षा पाकर विदेशों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इससे बेरोजगारी घटेगी, गरीबी दूर हो सकेगी और देश का विकास भी होगा।
मित्तल साहब, समय निकालकर बातचीत करने के लिए उद्योग जगत कार्यक्रम के श्रोताओं की ओर से आपका बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 4, प्रश्न 14 से 20। जाने माने इतिहासकार और लेखक हरिवंश प्रताप सिंह कुछ दिनों पहले अपनी पहली काबुल यात्रा से लौटे हैं। काबुल में बिताई एक शाम के उनके संस्मरणों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्मरण आपको 2 बार सुनाए जाएंगे।
नमस्कार, मैं हूं हरिवंश प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले मुझे काबुल की यात्रा का अवसर मिला। काबुल के इर्द गिर्द जहां तक नजर जाए माटी से लिपे घरों का झुंड दिखाई देता है या फिर उजाड़ में छितराए हुए खेत, चारों तरफ ऊंचे वनस्पति विहीन पर्वतों की कतार, बीच में मानो मटमैले पहाड़ों की हथेली पर शहर पसरा है। कुछ घर पहाड़ों की ढलान पर बने हैं, कच्चे और पक्के। उनमें हवा खूब आती है, शायद इसीलिए हवेली कहलाते हैं। मई के महीने में भी जहां तहां बर्फ की ढकी चोटियों वाली हिंदुकुश पर्वतमाला की तलहटी में हमारा बसेरा था। ऊपर देखें तो आकाश छूते पहाड़, पीछे माहौल में छाई धूल, उसके पीछे धूल के बुरके में दुबका काबुल शहर, सामने संतरी की तरह खड़े चंद देवदार। काबुल कोई 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई और बर्फीली ठंड की वजह से ही देवदार के पेड़ वहां होते हैं। पहाड़ और ठंडे रेगिस्तान के बीच उनकी मौजूदगी एक अनूठा सुकून देती है। 40 लाख की आबादी लांघ जाने वाला ये शहर अब चाहे उजड़ा दयार लगता हो, लेकिन कुछ दशक पहले वे दुनिया के बेहद खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। बीते जमाने के उसके वैभव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मुगल शासन की नींव रखने वाले रसिक बादशाह बाबर ने प्राण आगरा में त्यागे, लेकिन अपने मजार के लिए काबुल को चुना। बर्बादी के ढेरों दौर और दौरे देख लेने वाला काबुल आज भी खूबसूरत है। युद्ध में भले इमारतें ढेर हो गईं, हरियाली राख हो गई, शहर के बीच बहने वाली काबुल नदी गंदा नाला बन गई, दीवारों पर गोलों के दाग हर अफगान के घावों को कुरेदते हैं, लेकिन प्रकृति के कुछ जादू इतिहास के हादसों से भी आहत नहीं होते। गहरा नीला साफ आसमान उस शाम अचानक गहराने लगा, जैसे घटाओं ने धरती पर अपनी सलेटी चादर तान दी हो। गाइड से दोस्त में बदल गए दाऊद ने बताया, वहां का मौसम बाकी के इलाकों से उलट है। अभी हमारा मानसून है, मगर खत्म होने को है। यहां गर्मियों का मौसम जुलाई में आएगा, फिर सर्दियां और बर्फ। काबुल के लोगों को शायद घरों में बैठे रहना पसंद नहीं। सुबह वहां जल्दी ही फूटती है और उसके साथ ही लोगों का आना जाना, दुआ सलाम शुरू हो जाती है। दुआ सलाम के साथ बाजारों की चहल पहल बढ़ती जाती है। इसकी वजह यह भी है कि लोगों के पास रोजगार कम है, खासकर दीवारों के भीतर का। खोमचे वाले, पटरी वाले, खरीदार और तमाशबीन ही नहीं, मजदूर, सिपाही और सैनिक सब सड़कों पर हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चे भी, वहां से लौटने वाले भी, और भिखारी भी, जिनकी संख्या भारी है। वक्त की चाल में अफगानिस्तान भले ही विकास में पिछड़ गया हो, मगर देश की राजधानी के सड़क चौराहों के नाम पूरे आधुनिक हैं। चिकन स्ट्रीट, फ्लावर स्ट्रीट, सिटी सेंटर, द मजंग स्क्वायर, डाउनटाउन वगैरह वगैरह। इस नए दौर में न जाने कितने गोल चक्कर, चौराहे और बाग बदलकर सर्कल, स्क्वायर और पार्क हो गए हैं। थोड़ा अतीत से नाता रखते हुए और कुछ वक्त के साथ भटकते हुए अफगानिस्तान का जीवन मानो इसी तरह हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं हरिवंश प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले मुझे काबुल की यात्रा का अवसर मिला। काबुल के इर्द गिर्द जहां तक नजर जाए, माटी से लिपे घरों का झुंड दिखाई देता है या फिर उजाड़ में छितराए हुए खेत। चारों तरफ ऊंचे वनस्पति विहीन पर्वतों की कतार, बीच में मानो मटमैले पहाड़ों की हथेली पर शहर पसरा है। कुछ घर पहाड़ों की ढलान पर बने हैं, कच्चे और पक्के। उनमें हवा खूब आती है, शायद इसीलिए हवेली कहलाते हैं। मई के महीने में भी जहां तहां बर्फ की ढकी चोटियों वाली हिंदुकुश पर्वतमाला की तलहटी में हमारा बसेरा था। ऊपर देखें तो आकाश छूते पहाड़, पीछे माहौल में छाई धूल, उसके पीछे धूल के बुरके में दुबका काबुल शहर, सामने संतरी की तरह खड़े चंद देवदार। काबुल कोई 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई और बर्फीली ठंड की वजह से ही देवदार के पेड़ वहां होते हैं। पहाड़ और ठंडे रेगिस्तान के बीच उनकी मौजूदगी एक अनूठा सुकून देती है। 40 लाख की आबादी लांघ जाने वाला ये शहर अब चाहे उजड़ा दयार लगता हो, लेकिन कुछ दशक पहले वे दुनिया के बेहद खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। बीते जमाने के उसके वैभव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मुगल शासन की नींव रखने वाले रसिक बादशाह बाबर ने प्राण आगरा में त्यागे, लेकिन अपने मजार के लिए काबुल को चुना। बर्बादी के ढेरों दौर और दौरे देख लेने वाला काबुल आज भी खूबसूरत है। युद्ध में भले इमारतें ढेर हो गईं, हरियाली राख हो गई, शहर के बीच बहने वाली काबुल नदी गंदा नाला बन गई, दीवारों पर गोलों के दाग हर अफगान के घावों को कुरेदते हैं, लेकिन प्रकृति के कुछ जादू इतिहास के हादसों से भी आहत नहीं होते। गहरा नीला साफ आसमान उस शाम अचानक गहराने लगा, जैसे घटाओं ने धरती पर अपनी सलेटी चादर तान दी हो। गाइड से दोस्त में बदल गए दाऊद ने बताया, वहां का मौसम बाकी के इलाकों से उलट है। अभी हमारा मानसून है, मगर खत्म होने को है। यहां गर्मियों का मौसम जुलाई में आएगा, फिर सर्दियां और बर्फ। काबुल के लोगों को शायद घरों में बैठे रहना पसंद नहीं। सुबह वहां जल्दी ही फूटती है और उसके साथ ही लोगों का आना जाना, दुआ सलाम शुरू हो जाती है। दुआ सलाम के साथ बाजारों की चहल पहल बढ़ती जाती है। इसकी वजह यह भी है कि लोगों के पास रोजगार कम है, खासकर दीवारों के भीतर का। खोमचे वाले, पटरी वाले, खरीदार और तमाशबीन ही नहीं, मजदूर, सिपाही और सैनिक सब सड़कों पर हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चे भी, वहां से लौटने वाले भी और भिखारी भी, जिनकी संख्या भारी है। वक्त की चाल में अफगानिस्तान भले ही विकास में पिछड़ गया हो, मगर देश की राजधानी के सड़क चौराहों के नाम पूरे आधुनिक हैं। चिकन स्ट्रीट, फ्लावर स्ट्रीट, सिटी सेंटर, द मजंग स्क्वायर, डाउनटाउन वगैरह वगैरह। इस नए दौर में न जाने कितने गोल चक्कर, चौराहे और बाग बदलकर सर्कल, स्क्वायर और पार्क हो गए हैं। थोड़ा अतीत से नाता रखते हुए और कुछ वक्त के साथ भटकते हुए अफगानिस्तान का जीवन मानो इसी तरह हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ा है।
This is the end of the test.